आखिरकार अरमान भाई ने एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी इज्जत की रक्षा की थी और तुम्हें दुर्जन सिंह के आदमियों से बचाया था, तो तुम्हें तो भाई की चिंता होगी। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, वंशिका केवल आंसुओं भरी आंखों से ध्रुव की ओर देखती रही और उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी वंशिका ने गहरी लंबी सांस ली और फैसला लेते हुए बोली, नहीं, मैं इन सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। वंशिका ने सोचा कि उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं उसने अरमान पर जानलेवा हमला करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी। वंशिका को अब अजीब सा लगने लगा था, हालांकि वो तो पूरे 20 सालों से बदले की आग में झुलस रही थी और उसने अपना बदला ले भी लिया था। लेकिन अब अरमान सिंघानिया की अच्छी पहलू देखकर वंशिका को गिल्ट फीलिंग होने लगी थी और तभी उसने अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछा और खड़ी होकर मन ठान लिया कि वो अब अरमान को कुछ नहीं होने देगी। वैसे भी अभी केवल 3 घंटे बाकी थे, ऑलमोस्ट 24 घंटे का समय पूरा होने वाला था और 3 घंटे बाकी थे तो वो आराम से उसके वायरस का एंटीडोट बना सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वंशिका जल्दी ही अस्पताल से बाहर निकल गई और सीधा अपने घर के एक गुप्त कमरे में गई। वहां जाकर उसने जमीन पर बिछी हुई चटाई को हटाई और जल्दी ही वहां कुछ सीढ़ियां नजर आने लगी। वंशिका, जो कि आम लोगों की नजरों में एक छोटे से कमरे के घर में रहती थी, असल में इस घर में उसने एक बड़ी ही शानदार लैब बना रखी थी जहां पर वो कई वर्षों से अरमान सिंघानिया की मौत का सामान तैयार कर रही थी। वंशिका जितनी भी मेहनत करती थी, जो भी उसने आज तक कमाया था, वो सब उसने उस लैब को बनाने में लगा दिया था। अब जल्दी ही वंशिका ने वहां जाकर एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही राजवीर जिंदल अबीर और अविनाश के साथ अस्पताल में मौजूद था। उस वक्त आस्था अरमान के साथ थी। तभी रश्मि आस्था के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि कुछ डॉक्टर अरमान को चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारा इस तरह से यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, वरना वो अपने इलाज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब तुम आओ मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर आस्था को नानी माँ के वार्ड में ले आई थी। तो आस्था को नहीं पता चला था कि अरमान का इलाज करने के लिए डॉक्टर राजवीर जिंदल आ रहा है। वहीं जल्दी ही डॉक्टर राजवीर जिंदल अरमान के वार्ड में मौजूद था और उसने जैसे ही वहां जाकर अरमान के शरीर को देखा तो उसकी हैरानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। राजवीर जिंदल सब लोगों के लिए एक आम इंसान की तरह ही था, बाकी सब लोग उसे आम इंसान की तरह ही देख रहे थे, लेकिन जो राजवीर जिंदल के बारे में जानते थे वे उसे खौफ से देख रहे थे। दादाजी भी उस वक्त एक अलग वार्ड में ही एडमिट थे क्योंकि वे अरमान को इस तरह से देख नहीं पा रहे थे। वेल, जल्दी ही अब राजवीर ने अच्छी तरह से अरमान की पलकें खोलकर साथ ही साथ उसके कमर के हिस्से को देखना शुरू कर दिया था। वंशिका ने जहां अरमान को वायरस इंजेक्ट किया था वो अरमान की कमर का हिस्सा था। उसने अच्छी तरह से देख लिया था, जहां पर भी इंजेक्शन लगाया गया था उसके आसपास बड़ा ही गहरा घाव था और वो हिस्सा नीला हो चुका था। अब राजवीर जिंदल की अरमान की हालत देखकर भौहें से कोटते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई इतना खतरनाक वायरस अरमान सिंघानिया की बॉडी में इंजेक्ट करने की। कहीं ना कहीं उसे उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल अरमान की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तभी ऑलरेडी वायरस पूरे शरीर में फैलने लगा था। अगर ये वायरस एक बार पूरे शरीर में से होते हुए अरमान सिंघानिया के दिमाग तक चला गया तो उसके बाद अरमान की जान एक पल में चली जाएगी। तो इसीलिए जल्दी ही राजवीर जिंदल ने अरमान का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इतनी आसानी से उस वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाएगा, उसके लिए उसे काफी ज्यादा समय लगने वाला था। अरमान सिंघानिया के पास कम समय था। जल्दी ही अस्पताल के लैब में जाकर राजवीर जिंदल ने हर तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और उसे वायरस का एंटीडोट बनाने लगा था, लेकिन वो 8 से 10 एंटीडोट बना चुका था, लेकिन वे सभी फेल हो चुके थे। अब राजवीर जिंदल का पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो अरमान को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। उसका एक कारण था, राजवीर अरमान सिंघानिया को काफी ज्यादा पसंद किया करता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अरमान को बिल्कुल भी कुछ भी हो। अरमान के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अपनी बीवी के बाद अगर वो किसी को पसंद किया करता था या किसी से प्यार किया करता था तो वो सिर्फ अरमान सिंघानिया था। अरमान सिंघानिया को अपने बेटे की तरह ही मानता था। वो सोचता था कि अगर उसका कभी बच्चा होता तो अरमान सिंघानिया के जैसा ही होता। वहीं दूसरी ओर वंशिका एंटीडोट बनाने के लिए पूरी तरह से खुद को झोंक दिया था और तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वंशिका एंटीडोट बनाने में सफल हो गई थी। वहीं राजवीर जिंदल अभी तक एंटीडोट नहीं बना पाया था क्योंकि राजवीर को ये नहीं पता था कि आखिरकार ये वायरस किस तरह से बनाया गया है, और वो अरमान को गलत एंटीडोट नहीं दे सकता था क्योंकि अगर एंटीडोट एक बार गलत हो जाता तो अरमान की जान एक पल में चली जानी थी, तो इसीलिए वो कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। वहीं वंशिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसने किस तरह से ये वायरस बनाया है, इसीलिए उसे एंटीडोट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा था। एंटीडोट लेकर जल्दी ही वंशिका अस्पताल की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी के सभी लोग पूरी तरह से परेशान हो रहे थे और राजवीर जिंदल को देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रहे थे। फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे सब जानते थे अगर दादाजी को इस बात के बारे में पता चला कि अरमान को बचाने के लिए राजवीर जिंदल का सहारा लेना पड़ा तो शायद ये बात दादाजी को कुछ खास पसंद न आए। वहीं आहान, जो कि अब अपने भाई और दोस्तों के साथ मौजूद था, ध्रुव उसके पास आया और शांत स्वर में बोला कि तुम्हें इस वक्त रौनक के साथ रहना चाहिए। तुम जानती हो कि रौनक अरमान भाई को अपने बड़े भाई के जैसे कंसिडर करने लगी है और इस वक्त वो काफी ज्यादा टूटी हुई है। तुम जाओ और जाकर उसका ध्यान रखो। तब आहान रौनक के पास चला गया। रौनक अभी भी कॉरिडोर में ही बैठी हुई थी। उसे एक जगह बैठे हुए लगभग 5 से 6 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं थी। आहान को लगा कि उसे रौनक को उठाकर कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, उसके बाद से थोड़ा सा नॉर्मल फील करना चाहिए। इसीलिए आहान उसके पास आया और उसकी ओर देखकर गंभीरता से बोला, रौनक मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा कुछ खा लेना चाहिए। वैसे भी अरमान भाई जब उठेंगे और तुम्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो वो मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाएंगे और डांटते हुए बोलेंगे कि मैंने उनकी बहन का ख्याल नहीं रखा। तुम जानती हो अरमान भाई ने पहली बार किसी को अपनी बहन बनाया है। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, रौनक जो कि कब से अपने अंदर ही अंदर सिसक रही थी, अब आहान की बातें सुनने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और अचानक से वो उठी और उठकर तुरंत आहान को गले से लगा लिया और उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। आहान भी रौनक का साथ पाकर बच्चों की तरह रोने लगा। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से चिपक गए थे और बच्चों की तरह रोने लगे थे। वहीं आसपास के डॉक्टर नर्स ने उन दोनों को इस तरह से रोते हुए देख लिया था और जल्दी ही इस बात की खबर आकाश, सुमित, ध्रुव, मारिया, टाइगर, देव तक भिजवा दी थी। क्योंकि वे सभी एक साथ जमा थे, तब वे लोग जल्दी ही उनके पास पहुंचे, कुछ देर तक उन्हें देखते रहे और फिर सबको मना कर दिया था कि कोई भी उन्हें अलग ना करे। जितना वे दोनों रोएंगे उतना उनके दिल का गुब्बार निकल जाएगा और शायद इसी बहाने उनके बीच थोड़ी दूरियां आ गई हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
आखिरकार रौनक भी आहान को पसंद किया करती थी, लेकिन वो ड्रग्स का हादसा बीच में होने के बाद सब कुछ अलग सा हो गया था उन दोनों के बीच में। लेकिन आज दोनों एक दूसरे से लिपटकर जी भर कर रो रहे थे और न जाने किन किन बातों के लिए रो रहे थे। वहीं दूसरी ओर वंशिका हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो अस्पताल में आई, उसने देखा कि किस तरह से सब लोग रौनक और आहान को घूर रहे हैं। लेकिन वो जल्द से जल्द अरमान के पास पहुंचना चाहती थी। अरमान के पास जाकर वो उसे एंटीडोट देना चाहती थी। वहीं राजवीर जिंदल, जो कि एंटीडोट में हर बार फेल हो रहा था, वंशिका ने डॉक्टर को कहते हुए सुन लिया था कि इस वक्त एक बड़ा डॉक्टर अरमान के लिए एंटीडोट बना रहा है और वो इस वक्त लैब में है। वंशिका ने सोचा कि उसे सीधे तरीके से ये जो एंटीडोट उसने बनाया है उसे जाकर उस डॉक्टर को दे देना चाहिए। वो डॉक्टर अरमान को इंजेक्ट कर देगा या फिर जिस डॉक्टर ने जो एंटीडोट बनाया होगा उसके एंटीडोट से वो अपना वाला एंटीडोट रिप्लेस कर देंगे, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और अरमान की जान बच जाएगी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वंशिका जल्दी से अब राजवीर जिंदल की ओर जाने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो उस लैब में गई और वहां जाकर उसने राजवीर जिंदल को देखा, तो वंशिका पूरी तरह से कांप उठी थी, क्योंकि राजवीर जिंदल दूसरा वो इंसान था जो उस वक्त जब अरमान उसके भाई का मर्डर कर रहा था तब वहां पर मौजूद था और खून की छींटे राजवीर जिंदल के चेहरे पर जा गिरी थी और वो उस वक्त बड़े ही खतरनाक हंसी हंस रहा था। उसके दांतों पर भी खून लगा हुआ था जिससे वो बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा था। अब राजवीर जिंदल को देखने के बाद वंशिका को एक बार फिर से उसका वही वाला चेहरा याद आ गया था और अचानक से उसके होंठ पूरी तरह से कंपकपाने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, तभी अविनाश राजवीर जिंदल के पास आया और बेकरारी से बोला, और कितना समय लगेगा डॉक्टर जिंदल, प्लीज कुछ कीजिए, अरमान का वायरस उसके शरीर में बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर नीला पड़ रहा है, प्लीज कुछ कीजिए, क्या आप अभी तक एंटीडोट नहीं बना पाए हैं? तब राजवीर जिंदल उसकी ओर कॉन्फिडेंस से देखकर बोला, डोंट वरी, ये मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एंटीडोट बन जाएगा और अरमान की जान बच जाएगी। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वैसे भी वो मेरा चेला है। चेला? अब जैसे ही एक बार फिर राजवीर ने ये कहा, अविनाश कन्फ्यूजन से बोला, लेकिन आपने अपने घर पर भी यही बात बोली थी कि अरमान आपका चेला है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अरमान आपका चेला कैसे हुआ। तभी राजवीर जिंदल ने बताया कि अरमान 8 साल का था जब वो उसके हॉस्पिटल में आया था और तब उसने अरमान को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थीं और जो कुछ मैंने उसे सिखाया था अरमान ने वो सारी चीज़ एकदम प्रैक्टिकल की थी और वो मेरा शागिर्द बन गया था। अब जैसे ही राजवीर ने ये बोला, अविनाश को तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन वंशिका सब कुछ समझ चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। जोरों से लंबे लंबे और हाँफते हुए सांस लेने लगी थी। इसका मतलब साफ था कि राजवीर जिंदल ने ही अरमान को खून करने के लिए मजबूर किया था या फिर उसे उकसाया था, वरना अरमान तो उस वक्त एक मासूम बच्चा था और एक बच्चे को जिस रंग में ढाला जाए वो ढल जाता है और उस वक्त अरमान के दिल में अपनी माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। उसी का फ़ायदा राजवीर जिंदल ने उठाया था और अरमान को अपने जैसा बनाने की कोशिश की थी। ये अंदाजा लगाते हुए वंशिका पूरी तरह से चौंक गई थी।